તારીખ 18/12/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 164 મૂળ કેસેટમાં હમિંગ છે તથા ડિસ્ટર્બન્સ છે.
શ્રી સમય સાર પરમાગમ સંવર અધિકાર 181-83 ગાથા કે ટીકા કા અંતિમ પેરેગ્રાફ ફિર સે લેતે હૈ. ઇસી કો વિશેષ સમજાતે હૈ, ઇસી કો જો આગે બાત કહી કે ક્રોધ જ્ઞાન મે ક્રોધ નહીં, ક્રોધ મે જ્ઞાન નહીં, દોનો પરિણામ અપને મે હૈ. અહમ બુદ્ધિ એક મે કી જાતી હૈ, દો મે અહમ બુદ્ધિ હો સકતી નહીં. અનાદિ સે રાગાદિ ક્રોધાદિ ભાવ મે અહમ બુદ્ધિ રખી હૈ ઓર જ્ઞાન કો વિસ્મરણ કર ગયે હમ. જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્મા હૈ એસા ભૂલ કરકે હમ એસી પ્રકૃતિ વાલા હૈ, હમ ક્રોધ પ્રકૃતિ વાલા હૈ, હમ લોભ પ્રકૃતિ વાલા હૈ, હમકો માન પ્રકૃતિ હૈ એસા આપને માન રખા હૈ. વિભાવ મે અહમ બુદ્ધિ કી હૈ, એ અનાદિ સે વર્તમાન હાલત હમારી એસી હૈ. અબ કહેતે હૈ કે તુમ જ્ઞાન સ્વરૂપી હો, જ્ઞાન મે ક્રોધાદિક નહીં, ક્રોધાદિક મે જ્ઞાન નહીં, ઓર દોનો મે પરસ્પર આધાર આધે સંબંધ ભી નહીં હૈ. ઇસી કો વિશેષ સમજાતે હૈ, ઇસ બાત કો વિશેષ સમજાના ચાહતે હૈ. ઇધર જબ એક હી આકાશ કો અપની બુદ્ધિ મે સ્થાપિત કરકે આકાશ કા આધેર આધાર આધે ભાવ કા વિચાર કિયા જાતા હૈ, તબ આકાશ કો શેષ અન્ય દ્રવ્યો મે આરોપિત કરને કા નિરોધી હોને સે અર્થાત અન્ય દ્રવ્યો મે સ્થાપિત કરના અશક્ય હી હોને સે બુદ્ધિ મે ભિન્ન આધાર કી અપેક્ષા પ્રભાવિત નહીં હોતી. અલ્પ વિરામ લિયા હૈ, ક્યા કહેતે હૈ કે આકાશ કા વિચાર કરના હૈ કે આકાશ કો કિસકા આધાર હૈ, તો કે આકાશ કો કિસી અન્ય દ્રવ્ય કા આધાર હો સકતા હૈ. આકાશ કા વિચાર કરે તો આકાશ કો દૂસરા કોઈ દ્રવ્ય આધાર દે, આધાર તો કોણ દે સકતા હૈ કે જો બડા હૈ વો આધાર દેતા હૈ, કોઈ સંભવ નહીં હૈ. આકાશ ઇતના બડા દ્રવ્ય હૈ કે પીછે કોઈ જગા નહીં હૈ કે જિસકો આધાર દિયા જાય. તો કોઈ ભિન્ન પદાર્થ કા આધાર કી કોઈ અપેક્ષા જૈસે આકાશ કો નહીં હૈ, ઓર એસા જબ નિશ્ચય હોતા હૈ તો એક આકાશ હી આકાશ મે હી પ્રતિષ્ઠિત હૈ, કિસી કે આધાર બિના, કિસી કી અપેક્ષા બિના. દૂસરે કોઈ 6-5 દ્રવ્ય નહીં હોવે તો આકાશ રહે કે નહીં રહે, કે દૂસરે 5 દ્રવ્ય તો પરમાણુવત હૈ ઇનકે આધાર સે આકાશ રહે વો બાત તો હૈ નહીં. આકાશ કો કિસી કા આધાર કી જરૂરત નહીં પડતી હૈ, ઇસલિયે આકાશ કિસી કે આધાર બિના અપને આપ મે અચ્છી તરહ રહા હુઆ હૈ ઓર રહેને વાલા હૈ સદા. યે દ્રષ્ટાંત લિયા, યે ભલી ભાંતિ સમજ લિયા જાતા હૈ ઓર ઇસલિયે એસા સમજને વાલે પર સમજને વાલે કે પર સમજને વાલે કે પર આધાર આધેયત્વ ભાષિત નહીં હોતા. वह भाषण लिया है, वो भाषित विचार करके इसका स्वरूप का निश्चय होगा तो निश्चय से भाव भाषण आना चाहिए। निश्चय ऐसा होना चाहिए कि जिससे भाव भाषण आवे। देखो गुरुदेव के कथन पद्धति प्रवचन पद्धति ऐसी थी, वो जितने भी दृष्टांत देते थे तो तादृश प्रसंग को खड़ा कर देते थे। वो देते थे ना, कोई गाय दूध दूती है, गाय का दूध निकालती है, तो सब ऐसे प्रकार का बोले कि ऐसा पकड़े, ऐसा अंगूठा रखे, इस प्रकार से दूध निकाले, गाय को भी दर्द नहीं होवे और दूध भी अच्छी तरह निकले। ये भी दूध देने की कला होती है, हर एक आदमी दूध नहीं निकाल सकता। तो ऐसा बताते थे कि जैसे तादृश चित्र खड़ा हो जाए, इसको विजुअलाइजेशन कहने में आता है। क्या कहते हैं कि आपके ज्ञान में पूरा प्रसंग का चित्र खड़ा हो जाए, उसको भाव भाषण कहते हैं। विजुअलाइज होने से क्या होता है, भाव भाषण हो जाता है। ऐसे आकाश का दृष्टांत लिया तो आकाश का भाव भाषण होना चाहिए कि आकाश को कोई भिन्न आधार हो ही नहीं सकता, ऐसा एक महान पदार्थ विश्व में है सर्वत्र, जिसको कोई आधार हो सकता नहीं है, उसी को कहते हैं कि ये भाषित तो नहीं होता। पर आधार आधेयत्व आकाश को भाषित नहीं होता। अभी क्या है कि ज्ञान को लेना है, अकेला ज्ञान को लेना है, तो अकेला ज्ञान को कहाँ से लेंगे कि जो ज्ञान विशेष पर के साथ निमित्त निमित्त संबंध करके, ज्ञेय के साथ निमित्त निमित्त संबंध वाला ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमित हो गया है, वहां से तो भिन्न कर सकोगे नहीं, क्योंकि इसका आकार और ज्ञेय का आकार एक सा है। और भ्रांति अनादि से ऐसी पड़ी है कि वो ज्ञान में कुछ हो जाता है, आ जाता है, हो जाता है, आ जाता है, हो जाता है। मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, दो में से एक होता है। नहीं देखा तो कुछ नहीं लगा। अच्छा बुरा कब लगा कि देखा तब, इसके पहले नहीं देखा था तो अच्छा बुरा कुछ नहीं लगा था। इसलिए नए पदार्थ का ज्ञान होने से मुझे मेरे ज्ञान में कुछ न कुछ मुझे हो जाता है, ऐसा एक लगता है, वो झूठा भाव भाषण है। क्या वो भ्रांति है? झूठा भाव भाषण को वो भ्रांति है। इसलिए उसको छोड़ करके एक ज्ञान को कैसे किसके लेना, इस प्रकार जब एक ही ज्ञान को, एकाकार ज्ञान को लेना है, क्योंकि वहां कोई दूसरा पदार्थ का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, इसलिए वहां कुछ भ्रांति होने की भी जगह नहीं है। दूसरा ज्ञान देखा नहीं, मतलब जब श्री गुरु दिखाते हैं तो हमें दिखना चाहिए कि नहीं
चाहिए।
बीज का चंद्र नहीं दिखता है, वो पश्चिम दिशा में बीज का चंद्र होता है, सूर्य का बीज हो पश्चिम दिशा में उसका उदय होता है, दोष का बीज मैंने दोष। अब आप कहेंगे हमको नहीं दिखता है, जिसको दिखता है वो अंगुली निर्देश करता है, क्या करता है, अंगुली से बताते हैं। तो देखने वाले को अंगुली की दिशा में देखना पड़ेगा, बिना अंगुली देख पाएगा नहीं, और अंगुली को ही देखते रहेगा तो भी देखेगा नहीं, और अंगुली को देख करके फिर उसको देखना छोड़ करके फिर से आगे देखना पड़ेगा, इतना प्रोसेस है उसमें। ऐसे जब एक ज्ञान है, अनेक ज्ञान नहीं एक ज्ञान है, उसको ज्ञान विशेष कहा, इसलिए मतलब इसका मतलब क्या कि ज्ञान सामान्य नहीं होता तो ज्ञान विशेष कैसे हो सकता, सामान्य बिना विशेष का विशेषण कैसे लगता ज्ञान को। तो है तो सही, हमने नहीं देखा तो हमने हमको देखने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ सुविधा उतनी है कि वो चीज हमारे में है, उधर तो हमारे में नहीं है, दिखे नहीं दिखे, इधर तो हमारे में है, क्यों नहीं दिखेगा? हाँ, जो हमारे में है वो क्यों नहीं दिखेगा?
दिखेगा,
देखने वाले भी हम और जिसको देखना चाहते हैं वो भी हम, तो उसमें क्यों कौन सी आपत्ति है? अगर हमारी पूर्ण जिज्ञासा हो तो दिखेगा ही, नहीं दिखेगा ऐसा नहीं है। अगर हमारी जिज्ञासा नहीं है या कसर है इसमें तो नहीं दिखता है, उतनी बात है। वरना जिज्ञासा हुए और नहीं दिखे ऐसा नहीं बने। ज्ञानियों ने तो उतना रिस्पांस दिया है इस विषय में सही जिज्ञासा वाले को, तो जिस पदार्थ की जिज्ञासा हो, जैसे मोक्ष की भावना, मोक्ष की जिज्ञासा, स्वरूप की जिज्ञासा है, तो यथार्थ जिज्ञासा में, सच्ची जिज्ञासा में प्राप्ति का अंश है ऐसा बोला है। क्या प्राप्ति का अंश है ऐसा बोला है? प्राप्ति नहीं है तो प्राप्ति का अंश बोल दिया है वहां, समझिए। तो अपने लिए लिखा है वो बात, 23 के साल में जब वो चाहते थे कि हमको परमार्थ की प्राप्ति हो जाए, तो परमार्थ की जिज्ञासा में ऐसा लिया है कि उसमें एक अंश है, मनसुख राम सूर्य राम का पत्र चला है ना, उसमें वो बात लिया है। जिज्ञासा मत लीजिए स्वामी, बड़े सीधू तो घरे तो अंडरलाइन करियो है ना। આની જિજ્ઞાસા છે, આની જિજ્ઞાસા છે, એમ કરીને લીધું છે। खोज, अंतर खोज चाहिए जिज्ञासा से, क्या होता है अंतर खोज चाहिए, मेरा एक ज्ञान, एकाकार ज्ञान, मात्र ज्ञान, अकेला ज्ञान, वो ज्ञान में आता है कि नहीं? ज्ञान विशेष ज्ञान को ही ज्ञान, सामान्य ज्ञान की खोज करनी है, और पर्याय एक ही है। जैसे कोई इतना बड़ा कांच हुए पूरा दीवार का और फ्रेम नहीं हुए, तो इसके सामने जो भी आवे ऐसा लगे सब डबल डबल है। और आता है ना, खास करके ये जो ज्वेलर्स की दुकानों में बहुत कांच लगते हैं, तो ऐसा बड़ा स्टोर लगे कि डबल है जैसे सारे, और ऐसा ऐसा का ऐसा ही लगे। अकेला जो प्रतिबिंब को देखता है वो कांच को भूल जाता है। प्रतिबिंब में जो आकर्षित हो जाता है वो कांच को भूल जाता है। जैसे अपना मुंह देखता है तो इतना ध्यान से अपना मुंह देखे तो कांच को भूल जाएगा, कांच नहीं देखेगा। और अकेला कांच को देखेगा तो प्रतिबिंब गौण हो जाएगा, दिखने पर भी गौण हो जाएगा। जो कांच खरीदने को जाएगा वो कांच को ही देखेगा, उसकी क्वालिटी का नाप तो प्रतिबिंब से करेगा लेकिन देखेगा कांच को। तो उद्देश्य है उसमें देखने का, देखने देखने का उद्देश्य अलग अलग है। जो प्रतिबिंब को देखने वाला उद्देश्य है उसमें प्रतिबिंब दिखेगा, कांच नहीं दिखेगा। सिर्फ कांच को देखने का उद्देश्य है तो कांच को देखेगा, प्रतिबिंब को गौण कर देगा, दिखाई देगा लेकिन गौण कर देगा, ध्यान से नहीं देखेगा, लक्ष्य पूर्वक नहीं देखेगा। क्या फर्क पड़ेगा? लक्ष्य से ध्यान से नहीं देखेगा। तो ये तो एक परिणमन का प्रैक्टिकल है, ज्ञान का एक प्रैक्टिकल है। वो तो ऐसे हम ज्ञान में, हमारा एक ज्ञान को ज्ञान में लेने का उद्देश्य धारण करके प्रवृत्ति करें ज्ञान की। क्या ज्ञान में, ज्ञान में एक ज्ञान को देखने का उद्देश्य धारण करके हम ज्ञान की प्रवृत्ति करें तो एक ज्ञान दिखता है। और एक ज्ञान दिखने से इसका विचार किया जाए कि इसका आधार किसको है। एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके, मैंने बुद्धि को एक ज्ञान को ही देखने का उद्देश्य धारण करके इस ज्ञान का आधार आधेय भाव का विचार किया जाए, तब ज्ञान को अन्य शेष द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होते। एक दूसरा तरीका वो भी है उसमें कि ऐसे भी समझो कि नहीं पकड़ में आता है ज्ञान सामान्य, तो आप उधर से एक दूसरा एंगल से उसको पकड़ो, दूसरे दृष्टिकोण से कि ज्ञान सतत हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसको हम बंद करना चाहते हैं, इसका आधार ले लेवे। अगर दूसरे आधार से वो उत्पन्न होता है तो उस आधार को हम ले लेवे। ज्ञेय के आधार से ज्ञान होता है तो ज्ञेय को छोड़ा छोड़ा जाए। जैसे आंख से कोई ना कोई चीज दिखती रहेगी, अगर हमारी आंख खुली है तो आंख बंद कर दें, हमको कोई नहीं कुछ एक भी पदार्थ को नहीं देखना है। इसलिए क्या हमारा ज्ञेय आधारित ज्ञान बंद हो गया क्या, समाप्त हो गया क्या, अभाव हो गया क्या? क्रोध आया था ये किसने जाना? यहाँ तो क्या है कि एक ज्ञान को नहीं, क्या होता है, काम तो वर्तमान में होगा, भूत भविष्य में तो होगा नहीं। तो जब हम नए पदार्थ को जानते हैं तो जानने वाले का ऐसा एक भाव रहता है कि मेरा अलग ज्ञान नहीं रहता है। शिकायत क्या है कि हम जानते तो हैं लेकिन अलग रह करके नहीं जान सकते। हमारी आदत बन गई है एकत्व रूप से जानने की, तो हम अलग नहीं हो सकते, भिन्न ज्ञान का हम अनुभव नहीं कर सकते। और वर्तमान में वो कर सकते, भूत भविष्य में तो नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना। तो ज्ञान आपका सतत हो रहा है, अब ज्ञेय के आधार से हो रहा है ऐसा अनुभव है, तो ज्ञेय को खिसकाओ, ज्ञेय से हट जाओ, ज्ञान हट जाएगा क्या?
नहीं
हटने से ज्ञान हटेगा क्या? ज्ञान स्वतः और सतत रूप से, अपने आप और सतत रूप से जब हो ही रहा है, तो इसका कोई की मदद की जरूरत हो ऐसा बन सकता
नहीं
है। अगर किसी की मदद से ये होता हो तो ऐसा सतत हो सकता नहीं, और उसको जिसकी मदद बंद की जाए तो वो बंद हो जाएगा। जैसे किसी के पैसे से किसी का काम निकलता है, वो पैसे वाला पैसा देना बंद करता है तो काम रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है? ऐसा किसी की मदद से, ज्ञेय की मदद से ज्ञान होता है तो ज्ञेय को हटाने से ज्ञान रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? कि नहीं रुक जाएगा,
रुकना चाहिए।
अब ये युक्ति है, उसको अनुभव में लेना है। ये तो युक्ति तो विचार में आई, अब अनुभव में लेना है कि हमारा ज्ञान हो रहा है, सतत हो रहा है, हम बंद नहीं कर सकते चाहे तो भी। किसी भी हालत में ज्ञान बंद नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान स्वतः हो रहा है किसी के मदद बिना, और सतत हो ही रहा है। इसलिए हमारा ज्ञान का अनुभव करके हम देखें क्या, अभी
अनुभव करके देखें
कि क्या हो रहा है हमारे परिणमन में, क्या हो रहा है, हमारा अनुभव को हम पकड़ लें तो हमको पता चल जाएगा कि ज्ञान को किसी के अन्य आधार की कोई अपेक्षा नहीं है। और भिन्न आधार की अपेक्षा नहीं होने से एक ज्ञान ही, एक ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है, यह भली भांति समझ लिया जाता है, और समझ लेने वाले को पर आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता। ऐसा समझने से भाव भाषण आ जाएगा, ऐसा कहते हैं। देखो टीका यहाँ पूर्ण कर दिया है, हाँ भाव भाषण तक की बात लिया है कि ऐसे भिन्न ज्ञान को अवलोकन करके पहले ज्ञान स्वरूप का, ज्ञान स्वभाव का भाव भाषण करो। भाव भाषण होने से अनुभव होगा, और अनुभव होने से समर होगा, ये समर की पद्धति है। तो भाव भाषण लिया है इधर,
बाकी
पूरा नहीं हुआ है, नहीं हुई अभी, फिर तो कलश आता है, फिर टीका आएगी, फिर कलश लेंगे, फिर कलश के पीछे फिर और टीका थोड़ी लिखी है,
पूरी बात लिखी
है। तो क्या है कि समर करने में ये क्रम पड़ता है, ऐसा भाव भाषण होगा, भाव भाषण पूर्वक फिर भेद ज्ञान हो चालू रहेगा तो अनुभव में आ जाएगा, ऐसा लेना है। ये भेद ज्ञान चालू रखने का है, भाव भाषण करके भेद ज्ञान चालू रहता ही है, रखने का है मतलब रहता ही है।
हाँ
बुद्धि पूर्वक ऐसा विकल्प नहीं होता, मुनि दिशा में बुद्धि पूर्वक इतना कसाय नहीं होता, मान कसाय संजलन का होता है, बहुत मंद होता है, उतना तीव्र द्वेष फिर बाद में नहीं रहता है। समझाने के लिए फिर कथा में बात आती है, क्योंकि लोग तो अबुद्धिपूर्वक का मान को समझते नहीं, तीव्र मान को ही समझते हैं। तो भाई तेरा मान जहाँ तक रहेगा, मान कसाई के साथ तुझे तेरा परमार्थ धर्म प्राप्ति, पारमार्थिक धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए बाहुबली जी को केवल ज्ञान रुक गया था, मोटी मोटी बात बतानी पड़ती है। इस प्रकार ज्ञान का और क्रोधादिक तथा कर्म नो कर्म का वेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हुआ। अब उसका भावार्थ कहते हैं, क्या गाथा का भावार्थ कहते हैं। भावार्थ में क्या है के एकदम अलग कर दिया है, राग और ज्ञान को
अलग कर दिया।
इतना अलग कर दिया है कि जैसे दो पदार्थ का प्रदेश भिन्न होवे, ऐसा राग का और ज्ञान का प्रदेश भिन्न तो ले लिया है। पंडित जी थोड़ा आगे बढ़ के बात करता है क्या आचार्य महाराज ने तो दृष्टांत मान लिया कि दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रदेश अलग अलग है। तो दो पदार्थ का तो प्रदेश अलग अलग है, दो वस्तु का तो। यहाँ तो पंडित जी कहेंगे कि क्रोध और ज्ञान का प्रदेश भिन्न है, ऐसा कहेंगे क्या है? एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, कैसा लिया ने? एक सत्ता की अनुपत्ति है। तो फिर ज्ञान की बात जब चली तो वहां सत्ता और प्रदेश की बात नहीं लिया है, उसमें लिया है, दृष्टांत में लिया है। तो दृष्टांत में आया शुरू में, दोनों के प्रदेश भिन्न है इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है। इस प्रकार फिर जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है और आधार आधे संबंध नहीं है, तो ज्ञान जो के ज्ञानन क्रिया रूप है, तो ज्ञानन क्रिया जानन में अभिन्नत्व होने से अभिन्नत्व शब्द लिया है। दृष्टांत में प्रदेश शब्द सत्ता अलग अलग है ऐसा ले लिया है। गुरुदेव तो अंगुली का दृष्टांत देते थे कि एक अंगुली है वो दूसरे अंगुली में नहीं है, और ये किताब ग्रंथ है वो ठवणी के आधार से नहीं है, ऐसा आधार आधे समझ नहीं है, ऐसे दृष्टांत लेते थे। फिर यहाँ ज्ञान और क्रोधादिक तो दोनों भाव हो गए, वो दो वस्तु ये दोनों भाव है। तो पंडित जी ने वो बात ले लिया, ये दोनों भिन्न प्रदेश वाली चीज है ऐसा देखो, वो बात लिया है। कर्म लेव द्रव कर्म लेव के भाव कर्म लेव, यहाँ तो भाव कर्म की बात चलती है, यहाँ द्रव कर्म की बात नहीं चली है। आप ये पूछोगे कि इसका इस कथन का सबूत क्या है, आधार क्या है, तो कहते हैं कि पीछे वाला जो कलश है उसमें रागस्य ऐसा लिया है। क्या
रागस्य?
नानस्य रागस्य च। क्या लोगों का वेद ज्ञान करना तो उसमें दूसरे चरण में रागस्य च, नानस्य रागस्य च ऐसा लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? हिचके साथ रखने से क्या वेद ज्ञान होगा? आपका उद्देश्य विज्ञान करने का है या विज्ञान नहीं करने का है? जब आपको समझ छोड़ देना है राग से तो फिर लगाव क्यों रखना है? जब समझ छोड़ देना है तो फिर लगाव क्यों रखना है? लगाव रखना चाहिए। उपयोग तो चैतन्य का परिणाम होने से ज्ञान स्वरूप है, और क्रोधादि भाव कर्म लिया, पहले भाव कर्म लिया नाना वर्ण आदि द्रव कर्म, भाव कर्म में क्रोधा दिख लिया और द्रव कर्म में नाना वर्ण आदि लिया, क्योंकि आठ कर्म लेना है ना, तो आठ कर्म में नाना वर्ण दर्शनावरणी होने बता सब आएगा। क्रोधादि में द्रव कर्म नहीं लेना, इसका मतलब वो है क्या क्या लिखा है पंडित जी ने, चुका स्पष्ट लिखा है, मैंने तो पढ़ा नहीं था आपका प्रश्न पहले, लेकिन यहाँ तो पंडित जी ने तो साफ लिखा है कि क्रोधादि भाव कर्म और ज्ञानावरण आदि द्रव कर्म तथा शरीर आदि भाव कर्म, सभी पुद्गल के पुद्गल द्रव के परिणाम होने से जोड़ है, क्या दो जोड़ है ऐसा नहीं कहा, तीनों को एक वर्ग में डाला है, तीनों जोड़ है, जोड़ है क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें चैतन्य का प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, जैसे जड़ में अंधेरा है वैसे उसमें भी अंधेरा है, तो उनमें और ज्ञान में प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है, ये थोड़ा तकरार का विषय हो गया है आजकल बाद विवाद का, लिखा है स्पष्ट तो प्रश्न वो निकला कलकत्ता में बहुत चला प्रश्न प्रदेश में क्रोध तो ऊपर ऊपर है, उसका प्रदेश अलग है, और जहाँ ज्ञान है उसका प्रदेश अलग है, तो वो बात हमारी समझ में नहीं आती है, क्या उसका कहना था कि कुछ प्रदेश में क्रोध और कुछ प्रदेश में राग ऐसा तो बन ज्ञान ऐसा तो नहीं बन सकता, अभी एक ही प्रदेश में क्रोध हो गए और एक ही प्रदेश में ज्ञान हो गए तो अलग अलग कैसे हो, क्योंकि प्रदेश का मतलब कि जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके, कि एक अंश में एक प्रदेश के एक अंश में राग रहे क्रोध रहे और वही प्रदेश में एक अंश में ज्ञान रह जाए, ऐसा दो विभाग तो क्षेत्र का तो होता नहीं, उसको एक प्रदेश कहते हैं, तो ये गुरुदेव कहते हैं वो सारे समझ में नहीं आता है। मैंने कहा आप जो है दिव्यांग योग का दृष्टिकोण लगाते हो, क्या एक पदार्थ को समझने के लिए द्रव्यान योग में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव स्वचतुष्टय से पदार्थ का निश्चय करने में आता है, तो द्रव्यान योग का इस प्रकार से आप लगाओगे तो बात तो आपकी आपको समाधान होने वाला नहीं है, और इधर तो सुमर का अधिकार चलता है, माने अध्यात्म का अधिकार चलता है, किसका अधिकार चलता है अध्यात्म का अधिकार चलता है, वस्तु स्वरूप का निश्चय करने का अधिकार नहीं चलता है, अध्यात्म का अधिकार चलता है, अध्यात्म के अधिकार में वो बात बीच में नहीं लानी है, राग का क्रोध का आधार छुड़ाने के लिए और ज्ञान स्वाभाविक स्वरूप का आधार कराने के लिए वो बात चलती है, तो उसका प्रदेश एक रखोगे तो आधार कैसे बदलेगा, सब समझ लो के एक प्रदेश में ज्ञान और क्रोध दोनों है, द्रव्यान योग के हिसाब से, क्योंकि एक ज्ञान का परिणाम है, एक चारित्र गुण का परिणाम है, एक ज्ञान गुण का परिणाम है, अब वहां एक जगह दो चीज है तो उस जगह का आधार लेने से तो दोनों का आधार लिया जाएगा हो जाएगा, जिस प्रदेश का आधार लेना है, जिस सत्ता का आधार लेना है, इस सत्ता का आधार में दो ही चीज होगी तो दोनों का आधार हो ही जाएगा, आ ही जाएगा नहीं चाहते हुए भी, तो वहां कहते वहां एक है वो है ही नहीं, तुम आधार ले लो, तुम्हारे ज्ञान की व्यापकता में क्रोध की व्यापकता नहीं है, व्यापकता को ग्रहण करो, जहाँ ज्ञान व्याप्य व्यापक भाव में है वहां क्रोध व्याप्य व्यापक भाव में है ही नहीं, अगर दोनों की एक सत्ता होती तो एक दूसरे में व्यापक हो जाते, जब एक दूसरे में व्यापक नहीं होता है, क्रोध चले जाने से ज्ञान चले जाना चाहिए था, उसकी समव्याप्ति हो जाती तो एक के अभाव में दूसरा भी चला जाता, तो क्रोध निकल जाता और ज्ञान रह जाता है। इसका मतलब क्या कि दोनों व्यापक व्यापक रूप में नहीं था। पानी की बाल्टी में कुछ तेल की बूंद डाल दिया, दोनों का एक क्षेत्र है कि अलग अलग है। बाल्टी में पानी भी है और बाल्टी में तेल भी है, तो कि बाल्टी की अपेक्षा है लेकिन पानी तेल की अपेक्षा नहीं है। बाल्टी के हिसाब से तो बाल्टी में पानी भी है और बाल्टी में तेल भी है, लेकिन तेल में पानी नहीं और पानी में तेल नहीं है। ऐसे क्रोध में ज्ञान नहीं, ज्ञान में क्रोध नहीं, क्रोध ज्ञान रूप हुआ नहीं, ज्ञान क्रोध रूप हुआ नहीं। दोनों की व्याप्ति अलग अलग है, व्याप्ति अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि प्रदेश भी अलग अलग है। ऐसे बात है, अध्यात्म का दृष्टिकोण लगाए बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। ऐसी बात है, अध्यात्म का दृष्टिकोण है, द्रव्यानुयोग वाली बात इधर नहीं चलेगी। द्रव्यानुयोग वाली बात लेने को जाओगे तो एक प्रदेश में अनंत गुण है क्या? एक ही प्रदेश में ज्ञान चारित्र है नहीं, अनंत गुण का परिणाम है, कैसे अलग करोगे? बात थोड़ी ऐसी है। फिर से उपयोग तो चैतन्य का परिणाम होने से ज्ञान स्वरूप है, और क्रोधादि भाव कर्म, नानावरण आदि द्रव कर्म और शरीर आदि नौ कर्म, तीनों पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से। तो पुद्गल द्रव्य ले लिया है क्या? पुद्गल भाव नहीं बताया, पुद्गल द्रव्य बता दिया। देखो कितना जोर से बात किया है, ऐसा कहने में अध्यात्म का जोर आता है तब ऐसी बात चलती है। अध्यात्म का जोर को नहीं समझने वाले को तकलीफ होती है कि क्रोधादि को पुद्गल द्रव्य कैसे कह सकते हैं, वो तो चैतन्य का विभाव है। भाव कर्म है वो तो चैतन्य का विभाव है, चैतन्य का विभाव है ऐसा जानना एक बात है और उस पर वजन रखना वो दूसरी बात है, और वजन उठा लेना वो तीसरी बात है। जब वजन उठा लेंगे तो उसको पुद्गल द्रव्य कह देंगे, और वजन उठाने की बात है। ज्ञान में तो ऐसा ही है क्या? ज्ञान में तो ऐसा ही है, कोई परेशान करता है उसके लिए क्या बोलते हैं, बहुत त्रास देता है कुछ सुना करके, कैसा भी करके, क्या अपन लोग बोलते हैं, ये तो लोई लोई पिए से हमारा खून पी गया, क्या बोलते हैं, हमारे गुजराती में ऐसा बोले, लोई पिए से हमारा हो गया, तो क्या वास्तव में लोई पीता है कोई? कोई लोई निकाल करके पीता है क्या? बोलने में जब ऐसा नहीं आवे तो वो कितना परेशान करता है वो समझ में नहीं आएगा। ऐसा प्रदेश भिन्नत्व नहीं लगे तो भिन्नत्व क्या वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो वो समझ रखा है कि वो चैतन्य के विभाव परिणाम है। चैतन्य के तो है क्या नहीं, चैतन्य के तो है क्या नहीं, भिन्नता कैसे करोगे? ऐसी बात है, समझाने का तरीका है। ज्ञान में तो जो बात है सो है, लेकिन वजन उड़ जाएगा, पूरा का पूरा वजन उड़ जाएगा। अध्यात्म तो अध्यात्म ना दृष्टिकोण से समझाए, प्रयोग शब्द में तो क्या है, कोई अपने किसी भी परिणाम को प्रयोग मान लेते हैं, जैसे हम उपवास करते हैं तो हमारा वो प्रयोग है, हम संयम पालते हैं वो हमारा प्रयोग है, ऐसा नहीं चलता, वो व्यापक शब्द है। अध्यात्म को समझने के लिए आत्मा का शुद्ध शुद्धात्मा का आधार कैसे लिया जाए, उस खास दृष्टिकोण को, विशिष्ट दृष्टिकोण को समझना चाहिए, जहाँ तक वो खास दृष्टिकोण पकड़ने में नहीं आवे तो अध्यात्म की बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ तो भाव कर्म को लिए परद्रव्य क्या है, उद्गल द्रव्य। नियम सार में तो कहेंगे कि क्षायिक भाव भी परद्रव्य है, अब कहाँ से समाधान करोगे? केवल ज्ञान के पर्याय परद्रव्य कहेंगे तो आचार्य कहते हैं, कुंद आचार्य कहते हैं, मूल गाथा में कहते हैं, समाधान कैसे करोगे? द्रव्यानी योग की पकड़ रखोगे तो समाधान कैसे होगा? कि पारिणामिक भाव की भावना चल रही है, आचार्य महाराज की आत्म भावना चलती है। क्या जिस आत्म भावना से केवल पूर्ण शुद्धि होगी, अब तो पूर्ण शुद्धि नहीं है आचार्य महाराज को, छठे सातवें गुण स्थान में है, लेकिन आत्म भावना में कहां तक आत्म भावना पाते हैं? कि केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पहले भावना बातें हैं कि मैं तो पारिणामिक भाव हूं। 320 में आया कि नहीं, खंड खंड ज्ञान में नहीं हूं, चार प्रकार के पर्याय में नहीं हूं, उसको नहीं भाता है साधक, उसको धर्मी इसको नहीं भाएगा। हाँ बस अलग कर देना, वो तो राग और ज्ञान के बीच में लिया है कि आत्म भाव है और ये अन्य भाव है। अब भेद ज्ञान से स्वरूप का ग्रहण हो गया तो स्वरूप की इतनी भावना में आएगा, इतनी भावना आगे आएगा कि एक समय के पर्याय को भी अन्य भाव कर देगा। ऐसा तो अध्यात्म का विषय थोड़ा ऐसा है। उनमें और ज्ञान में प्रदेश भेद होने से, क्या तीनों में और ज्ञान में प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है? क्या लिखा? अत्यंत भेद है, थोड़ा भेद नहीं है, पूरा का पूरा भेद है। जब मेरे स्वरूप में नहीं है, उसका अभाव हो जाने से मेरा स्वरूप का अभाव होता ही नहीं, तो फिर मुझे लगाव क्यों रखना? इतना विचार करना है। और जो कहते हैं कि वो आत्मा का है, तो आत्मा का है ऐसा ऐसा रख करके तुम वितरागता कैसे करोगे वो बताओ। वाद विवाद करने का हेतु है कि वितरागता का हेतु है? तो तुम्हारी जो बात है उसमें तो वितरागता होने वाली नहीं है। नहीं, स्वभाव को रखने का है, आत्मा में आत्मा को तो रखने का है, और जो अनात्मा है वो तो आत्मा में है ही नहीं, मान रखा है, वो भ्रांति को निकाल देना है। वो लिखा क्या नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये बालानाम आत्मा राग से समाहित नहीं होने पर भी जो आत्मा राग से समाहित मानते हैं, ये बाल बुद्धि जीवों का एक भ्रम है। लिया है कि नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चौदवी गाथा है ना, प्रसाद से दे पाए, समय तो कुछ कम रह गया है, प्रसाद से दे पाए। भव बीजम बालिशा नाम भव बीजम, क्या लिखा है? एवं कर्म करते ही भावे ही असमाहितोपि, ये रागादि क्रोधादि कर्म कृत भाव है, कर्म जन्य भाव है, तो इससे आत्मा समाहित नहीं है, फिर भी उसको युक्त नहीं, वो समाहित है ऐसा प्रतिभाते, युक्त प्रतिभा से राग वाला प्रतिभाषित होता है किसको? बालिशा नाम, जो बाल बुद्धि है अज्ञानी है उसको भाषित होता है ऐसा प्रतिभास ही सखलु भव बीजम, यही भव का बीज है। एक जीव मरता है आयुष पूरा करके, दूसरा भव में क्यों जाता है? के राग समेत आत्मा को माना, राग युक्त आत्मा को माना, इसलिए ऐसा भाषित हुआ, मैंने ऐसा अनुभव हुआ, इसलिए अगर ऐसा नहीं होता तो उसको भव नहीं मिलता, भव का बीज खत्म हो जाता। राग रहित आत्मा का दर्शन और अनुभव है वो तो भव बीज को बाल जला देता है, क्षय कर देता है, इसका प्रतिपक्ष निकलता है इसमें।
जितना राग है उतना भव है, जितना राग है
उतना भव है। राग सहित पड़ा लेना वो भव का कारण है, राग रहित पड़ा लेना वो भव का अभाव का कारण है, बस जिसको भाव भ्रमण नहीं करना है उसको ऐसा आत्मा का आलम्बन लेना है, ऐसी बात है। ठीक चल पची टेव पड़ी जैसे ना अपने 10 मिनट मोड़ा बने टेव पड़ी जाए ना नहीं रेग्युलर करे ना बंद ना दिवस हो तो 15 मिनट मोड़ो सर 15 मिनट मोड़ो અને પૂરું પણ 15 મિનિટ મળું એમ એટલે પંક્ચ્યુઆલિટી કરીએ તો સામૂહિક પ્રોગ્રામમાં તો ટાઈમ પંક્ચ્યુઅલ હોય એટલું વધારે સારું છે પૂરું કરી નાખે પાવા થાવ ઇસલિયે ઉનમે ઓર જ્ઞાનમે પ્રદેશ ભેદ હોને સે અત્યંત ભેદ હૈ ઇસલિયે ઉપયોગ મે ક્રોધાદિક कर्म तथा नो कर्म नहीं है। उपयोग में क्रोधादिक है क्या?
नहीं है।
भाव कर्म आत्मा के प्रदेश में आप लेंगे लेकिन उपयोग में है क्या? तो उपयोग की कोई सत्ता है क्या? नहीं है। उपयोग की कोई सत्ता है कि अस्तित्व बिना की चीज है? अच्छा, क्रोध का अस्तित्व भी है? दोनों का अस्तित्व एक है क्या? जो दोनों का एक अस्तित्व होता तो क्रोध का अभाव होने से ज्ञान का भी आत्मा का भी अभाव हो जाता।
उपयोग होता तो क्रोध भी होता
है। और क्रोध का नाश होने से उपयोग का भी नाश हो जाएगा। पर्याय की भिन्नता क्यों लेते हैं? कि पर्याय क्षणिक है और हम शाश्वत हैं, तो पर्याय का नाश होने से हमारा नाश हो जाएगा। उन्हें 320 में लिया जैसे आचार्य देव ने, ध्यान विनश्वर है और ध्येय अविनश्वर है। ध्यान का नाश होने से ध्येय का नाश हो जाएगा, इसलिए एक समय के पर्याय कथनचित भिन्न है। क्या कथनचित भिन्न लिया है? कथनचित मैंने किसी अपेक्षा से भिन्न है, ऐसी बात है। तो स्वभाव में तो हो ही नहीं सकता ना। क्रोध है, ज्ञान है, वो क्या क्रोध रूप हो सकता है? तो अशक्य है ही। ज्ञान का क्रोध रूप होना तो अशक्य है ही। वो तो बने, कोई अपना ज्ञान को क्रोध रूप कर सकते हैं, बना सकते हैं, पलटा सकते हैं, ज्ञान को क्रोध में पलटा सकते हैं क्या? तो ये तो सम्यक दृष्टि को अनुभव है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, क्रोध होता है तो जानने में आता है, लेकिन मैं क्रोध रूप होता हूं ऐसा जानने में नहीं आता। वो तो बात चलती है, उसके अनुभव में क्या बात आती है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरा ज्ञान पलट करके तो क्रोध रूप होता नहीं, तो मैं क्रोध रूप हुआ वो कहां से आया? क्या ही नहीं, वो अशक्य है। 92, 93, 94 चार गाथा में लिया ना, कर्ता कर्म अधिकार, अशक्य शब्द लिया है। भरत जी को आया ही नहीं था। भरत जी को नहीं आया था। जो आया था, जिसको आया था, वो भरत जी नहीं था। क्या?
बराबर।
जिसको क्रोध आया था वो भरत जी नहीं था। आपने पहचाना नहीं भरत जी को है? आपने भरत जी को पहचाना नहीं, ऐसी बात है। गरासिया मैम के राजा महाराजा होएगा, ने ताव आयो है ने बापू ने ताव आयो है तो शू के बापू आपने दुश्मन ने ताव आयो है? बापू ने न कहवा तुमने ताव आयो है, મારે બોલો શું? ઘરે એમ ન કહે બાપુ તમને તાવ આવ્યો છે, બાપુ તમારા દુશ્મન ને તાવ આવ્યો છે, વાત સાચી છે, શરીર એનું દુશ્મન જ છે, જીવ થી પૂતગળ એનું દુશ્મન છે। ક્રોધ ભરતજી કો નહીં આયા થા, ભરતજી કે દુશ્મન કો આયા થા? કિસકો આયા થા? ભરતજી કા દુશ્મન થા, ભરતજી નહીં થા વો। हाँ, અધ્યાત્મ માં તો બધું ક્યાં અભિષેક આવવાનો હતો, પ્રકરણ અધ્યાત્મ નું ચાલે છે. આત્મા જ્ઞાન જલ સે સ્નાન કરે ઓર જ્ઞાન સમુદ્ર મે ડૂબ જાય, વહી સચ્ચા અભિષેક હે, અધ્યાત્મ કા અભિષેક હે. ઓ કહેતા હે અભિસિંચતિ, સંસ્કૃત શબ્દ બોલે સિંચતિ, મૂળ શબ્દ સિંચતિ હે, ઉસમાં સે અભિસિંચતિ, અચ્છી તરહ સિંચન કરના, સિંચન કરના પાણી દેતે ને વૃક્ષ કો સિંચન કરતે પાણી કા, એસે સ્વભાવ કા બાર બાર શ્રદ્ધા કા પૂટ દેના, શ્રદ્ધા કા સિંચન કરના, સમ્યક શ્રદ્ધા કા સમય સમય પર સિંચન કરના, એ વાસ્તવિક અભિષેક હે. તો આનંદ બાર ક્યા મૂર્તિ કા અભિષેક તો આનંદ બાર ક્યા. इसलिए उपयोग में क्रोधादिक कर्म तथा नो कर्म नहीं है, और क्रोधादिक में कर्म तथा नो कर्म में उपयोग नहीं है, ये तीनों में उपयोग नहीं है, उपयोग में ये तीन नहीं और तीन में उपयोग नहीं है. इस प्रकार उनमें पारमार्थिक आधार आदि संबंध नहीं है. हमारा ज्ञान स्वरूप आत्मा को દ્રવ કર્મ કી અપેક્ષા નહી, નો કર્મ કી અપેક્ષા નહી, ભાવ કર્મ કી ભી અપેક્ષા નહી, અપેક્ષા હી નહી હૈ ઉસકે, અપેક્ષા નહી હૈ, ઇસલિયે હમ ઉપેક્ષિત હોકર કે ચલતે હૈ. ક્યા અપેક્ષા નહી હૈ તો ઉપેક્ષિત હોકર કે ચલતે હૈ. રાગ ને અપેક્ષા છોડી ને ज्ञान में अंतर स्वभाव का लक्ष्य करना है. भाव स्रोत वाला आया है ना 1002 वचनामृत गुरुदेव का, बिना विकल्प के ज्ञान वेदना कैसी है, जिज्ञासा में लेना है. सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान बिना विकल्प का है और वो वेदन रूप है. बिना विकल्प के ज्ञान की वेदना कैसी है, राग की अपेक्षा छोड़ करके उसका अंतर लक्ष्य करना. क्या बताया गुरुदेव ने, परमागम सारे ने 1002 वचनामृत में अपेक्षा आधार छोड़ाने में क्या मतलब, क्या है हेतु, क्या है अपेक्षा छोड़ाने की बात है. विकल्प बिना की ज्ञान की वेदना कैसी है, इसका अंतर लक्ष्य करना ज्ञान सामान्य का, क्योंकि वेदना तो ज्ञान पर्याय में होती है, उसका अंतर लक्ष्य करना उसका नाम भाव स्रोत का लक्ष्य है. राग की अपेक्षा छोड़ करके क्या क्या बात है उसमें, थोड़ी सी जो बात है कि अनादि से राग की अपेक्षा रखी है उसको छोड़ देना, उसको छोड़ करके स्वयं का लक्ष्य करने से भाव स्रोत खिलता है, और वो भाव स्रोत खिलेगा तो उसमें आनंद के फुहारे लगेंगे. ऐसे बात है, वो अपेक्षा छोड़ने की बात है. इधर हाँ मीठा लगता है क्या राग है, सो मीठा लगता है, अच्छा लगता है. वास्तव में गुरुदेव कहते थे, हम लोगों से पता चलता है, कोई कहते हैं कि लड्डू खाते हैं हमको मीठा लगता है, मिठाई खाते हैं तो मीठा लगता है, गलत बात है. तुम अंतर अवलोकन कर, मिठाई खाने का राग तुमको मीठा लगता है, लड्डू मीठा नहीं लगता है. लड्डू को तो तुम छोड़ देगा लेकिन लड्डू का राग को छोड़ेगा नहीं. अभिप्राय में वो पड़ा है कि 3 लड्डू खाया लेकिन मेरा राग तो ऐसा है कि अगर खाया जाता तो 300 में खा लेता, और भी खाया जाता तो 3000 भी में खा लेता. मिठास किसकी आई, कि जो अभिप्राय में अच्छा माना है उसकी बात निकलते ही मिठास लगने लगती है. तो राग को, राग की अपेक्षा बहुत है जीव को, संसारी जीव को राग की अपेक्षा बहुत है. ऐसी बात है, उधर देख लेना भीतर में क्या बात है। आधार आदि संबंध नहीं है, इस प्रकार उनमें पारमार्थिक आधार आदि संबंध नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना आधार आधेयत्व अपने अपने में ही है, इसलिए उपयोग उपयोग में ही है और क्रोध क्रोध में ही है। दोनों पर्याय के बीच में पहले वेद ज्ञान चालू कर देना। इस प्रकार वेद ज्ञान भलीभांति सिद्ध हो गया, यानी भाव कर्म इत्यादि का और उपयोग का भेद जानना या भेद का अनुभव करना, यही वेद ज्ञान है। इस तरह से यहाँ वेद ज्ञान कराया है आचार्य महाराज ने।